भगवद गीता में आता है कि लोग संग्रह के लिए ही देवोपन करना चाहिए। उसमें लोक संग्रह का वर्णन करते हुए जैसे आरम्भ करते हैं दूसरे लोग भी उसी उसी के अनुसार काम करते और जो श्रेष्ठ पुरुष जी को प्रमाणित कर देता है लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष आदर्श पुरुष होता है और दूसरे उसके अनुयायी होते हैं और अगर जो भी बात करते हैं कि कर्मों में आसक्त पुरुष जैसे काम करते हैं तो आसक्ति रहित पुरुष वैसे ही काम करे, आसक्ति रहित होकर करे और लोक संग्रह चाहता हुआ करे तो लोक संग्रह की बात दोनों जगह आई। एक तो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उसके अनुसार साधारण जनता करे और वो प्रमाणित कर दे उसके अनुसार करते ये लोक संग्रह हुआ और ज्ञानी महात्माओं के लिए कहा कि जैसे आसक्ति वाले पुरुष है अज्ञानी वो करते हैं वैसे चाहे ज्ञानी करे तो आदर्श यहाँ अज्ञानी हुई और ज्ञानी अनुयायी हुआ और दोनों के लिए लोक संग्रह आया। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य साधारण लोग तो स्वाभाविक ही आदर्श पुरुष करते हैं वैसा करते हैं भी उनको ही अपना आदर्श पुरुष मानते हैं और वो प्रमाणित कर देता वो भी करते हैं। तो दो बात कही, एक तो भी करते हैं जैसा दुनिया करती है और एक भी जिसको प्रमाणित कर देते हैं आज्ञा दे देते हैं अनुमति छे देते हैं उसके अनुसार लोग करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों का कहना और करना है उसके अनुसार ही संपूर्ण मनुष्यों को करना चाहिए करते हैं। पर याद देते हैं सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा उर्वंदी अविद्वान सर जो विद्वान नहीं है परमात्मा तत्व का पूर्ण बोध जिनको नहीं हुआ है और कर्मों में जिनकी आसक्ति है ऐसे पुरुष करते हैं उसी दिशा से ही गुण बोधवान ज्ञानी पुरुष को आसक्ति रहित और कर्म करना चाहिए क्योंकि लोक संग्रह को चाहता हो तो यह करने का आज्ञा है कि ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए अज्ञानी की तरह। अज्ञानी कौन सा है ना जो शास्त्रों में और परलोक में जिनका विश्वास है और उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं ऐसे पुरुष जो अज्ञानी उनको आदर्श माना और जो आदर्श किस विषय में माना यथा पूर्वंती जिस प्रकार से वे करते हैं तत्व के जीवन मुक्त को भी चाहिए कि वो भी उसी प्रकार से करें। तो प्रकार तो अज्ञानियों का लेने आया है और ज्ञानी महात्मा के तो प्रकार और आत्म मात्र का ही है। यदि यद आचार्य श्रेष्ठ जो वो आचरण करते हैं तब तब एक इधर हो जाना दूसरे दिन वैसा वैसा ही करते हैं और ज्ञानी के लिए कहा अज्ञानी जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से ज्ञानी को पढ़ना चाहिए। सात्वी अज्ञानी होते हैं, कर्मों में आसक्ति है, शास्त्रों में आसक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, आविर्भाव है। कर्मों में आसक्ति होने के कारण से कर्मों के करने में बिल्कुल सांगोपांग करेंगे। किसी अर्थ में कोई भी विधि में छुट्टी न रह जाए, रीति से बड़ी सावधानी से भी काम करें। अब जो ज्ञानी महात्मा पुरुष है उन्हें कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की कोई प्राप्ति की वासनाएं नहीं है, वो तो पूर्ण प्राप्त हो चुके हैं, वो भी काम करते हैं, उनमें विधि की कमी रहना संभव है, कहीं कहीं कमी रह जाए तो उस कमी को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं जैसे आसक्ति वाले इंसान को पालन काम करते हैं, ऐसे ही बड़ी तत्परता से और बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और वो करना किस बात है, उनकी आसक्ति नहीं, कामना नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं। उनका प्रयोजन क्या है, लोग समझ, लोग वैसे ही करें, नहीं तो लोग भी आलस्य कर रहे, प्रमाण कर रहे, उस वास्तव आलस्य प्रमाण न करे, किंतु वे जैसे करते हैं उसी भी किसी काम करे। उस वास्तव का न बुद्धि भेद करिए विज्ञान कर्म संज्ञान जो श्री सर्वकर्माने विद्वान समाचरण। विद्वान को बड़े अच्छी तरह से आदर्श करते हुए उन लोगों से भी वैसी करवाना चाहिए, बुद्धि भेद न करे। तो ज्ञानी महात्मा के लिए कर्तव्य न होने पर भी लोग संग्रह के लिए सांगोपांग काम करना चाहिए, और लोग साधारण है भी तो अपना कल्याण चाहते हैं तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों के अनुसार ही आचरण बनाए, उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपने चरित्र से भी उनको ज्ञान हो जाए। तो ज्ञानी पुरुष जब वो चाहे आदर्श बने चाहे अनुयायी बने, उनके करने का कोई स्वयं के प्रयोजन नहीं और उनके द्वारा दुनिया का महान हित होता है। लोक संग्रह जिसको कहते हैं कि उन मार्ग से बच करके सन्मार्ग में लोग चले, उसके कुछ लोग कहते हैं लोक संग्रह। तो उस संग्रह करते हैं उनको अच्छी मर्यादा में चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा छोड़ करके चलेंगे तो उनका अहित होगा, खत्म हो जाएगा। इस वास्ते वे ऐसा चले जिससे उनका उत्थान हो। तो लोक संग्रह का मतलब हुआ लोगों का उद्धार। लोक संग्रह तीन जगह से आता है, एक तो स्वर्गाधिक लोगों का भी लोकवाचक शब्द है, एक साधारण जनता को भी लोक कहते हैं, और शास्त्रों में वैदिक प्रयोग है वो तो वैदिक है, उनकी सेवा जितने सिद्धि आदि के लिए वचन है वे लोग उपयोग कह जाते हैं। लोग को वैदिक दो तरह के, तो उन लोक संग्रह का मतलब जो लौकिक वचन है शास्त्रों में तो उन वचनों के अनुसार चलने का और चलाने का प्रयत्न है, वो लोक संग्रह है। और जो स्वर्ग आदि लोग हैं, लोगों की स्थिति है वो भी तो कर्मों के अनुसार ही है। तो श्रेष्ठ काम होगा तो लोग संग्रह होगा, माना ऊंचे लोगों में जाएंगे, और वो श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे तो पतन की तरफ चले जाएंगे, तो वो लोग संग्रह नहीं होगा। तो उनकी उन्नति के लिए वैसा करें कोई लोक संग्रह। और वो जो जनता है उस जनता के लिए भी श्रेष्ठ पुरुष करेंगे तभी तो जनता वैसा करेगी। और जनता में जो आस्तिक पुरुष है, शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास करते हैं, शास्त्रों के करने के अनुसार कहने के अनुसार करने से फल की प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा जिसका विश्वास है, वे ही तो सांगोपांग काम करते हैं। तो ज्ञानी के लिए बताने के लोग संग्रह चाहता हो वो भी ऐसे सांगोपांग काम करे तो लोगों का संग्रह होगा, मन लोगों को विग्रह नहीं होगा, लोगों का पतन नहीं होगा, मनुष्यों का उद्धार होगा। श्रेष्ठ पुरुष वैसे ही करें, तो इसका नाम लोक सुंदर हुआ। तो अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं जनक आदि भी कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, मान अपने कर्म करते ही उस तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, और तुम्हें भी उसी को प्राप्त करना है तो तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य न हो तो भी लोक संग्रह के बाद संतोष लोक संग्रह किया तो तुम्हें काम करना चाहिए। तो अर्जुन युद्ध से इनकार करता था, उसके लिए भगवान ये विशेषता से कहते हैं लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए, मानो कर्तव्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रेष्ठ कर्म है वे तो अपने और दुनिया के सबके लिए महान हित करने वाले काम है, वैसे करना चाहिए। तो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सबको चढ़ना है। इस बात से अगर कहा तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इस बात से कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम, इस बात से शास्त्र के विधान को समझ करके और कर्म करने लायक है तुम ऐसी आज्ञा दी। तो शास्त्र का उल्लंघन कहाँ होता है, उस उल्लंघन के लिए बताया आत्म संपत्ति में प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना दुर्गासुरा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नियंत्रण में, मन किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किससे निवृत्त होना चाहिए, कौन सा काम तो नहीं करना चाहिए कौन सा काम करना चाहिए, इन बातों को नहीं जानते। बल्कि लोगों धन के संग्रह में और लोगों की भोगने में जिनकी बुद्धि लगी है वे पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य को समझ नहीं सकते। उनकी बुद्धि हरदम जड़ पदार्थों के मांसमाल पदार्थों के संग्रह में लगी है और उनके संयोग से सुख भोगने में लगी है, तो उनकी बुद्धि में वास्तविकता नहीं आती। नश्वर पदार्थ ही जिनकी बुद्धि में बैठ गए संग्रह इंद्र करना उपभोग इंद्र करना, तो जड़ता आई बुद्धि तो जड़ता आ जाने से बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है। तो उनका विवेक कैसे जागृत हो, कभी उपदेश दे करके भी काम करके भी उनके आदर्श बन करके उन मनुष्यों के अनुयायी बन करके भी उनको उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लाना चाहिए, ये भगवान का आवास है। इसलिए भगवान अपना उदाहरण दिया कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और प्राप्तव्य भी नहीं है तो भी मैं वैसे ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरा सब अनुगमन करते हैं, तो मैं अगर न करूँ तो लोग वे नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं सावधानी नहीं रखूँ तो भी उनका पतन हो जाए। इस बात के जैसा पेश करता हूँ और पूरी सावधानी से करता हूँ, तो काम करना और सावधानी से करना ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। भगवान से लेकर साधारण से साधारण मनुष्य के पति भी ये कर्तव्य लागू होता है। नारायण अनुशास्त्र की मर्यादा के अनुसार करना चाहिए। अभी अपने शरीर को कहते मैं हूँ, इस शरीर को मैं हूँ ऐसा आज से 100 वर्ष पहले कहते थे क्या, ये शरीर ये मैं हूँ ऐसा इसको कहते थे पहले नहीं कहते थे, और 100 वर्ष के बाद इस शरीर को मैं हूँ कहोगे, मानो पहले यह शरीर मैं हूँ ऐसा भाव नहीं था और फिर यह शरीर मैं हूँ ऐसा भाव नहीं रहेगा, तो बीच में यह शरीर मैं हूँ ये माना हुआ मैं हुआ,
किसी वस्तु को मान लेते हैं ना, ये मेरी वस्तु पहले मेरी नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, तो बीच में मेरी मानी नहीं हुई। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं मेरी मेरी जिनको कहते हैं, वे मेरी नहीं थी, चाहे वो कुटुंब हो, चाहे रुपया हो, चाहे घर हो, जमीन हो, और फिर ये मेरी नहीं रहेगी। तो ये निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि ये मैं और मेरा ये केवल माना हुआ है, और केवल माना हुआ है इसको सच्चा मान लिया कि मैं यही हूं और ये मेरी है, ऐसे सच्चा मान लेना, यही है बंधन, ये है माया। मैं रू मोर तो माया जी, बस कीने जीव निकाया, मैं और मेरा ये माया है, इसने सब संसार को अपने बस में कर रखा है, इस माया में भूल गए। कहते हैं भगत करके भगवान की विचित्र माया है, उस नाम फंस गए, तो भगवान की विचित्र माया ने नहीं फंसाया है, अपने जो मैं और मेरा मान लिया इसमें हम फंसे। सीधी बात है, ये मैं और मेरा अपना माना हुआ है, इसको अपना न माने इसमें हम सब स्वतंत्र हैं। जिन जिन वस्तुओं को आप अपनी नहीं मानते हैं तो वो अपनी नहीं दिखती है। बहुत बार मैंने कहा है कि आपकी कन्या पड़ी होगी, मेरी कन्या है, तब चिंता रहती है और उसको भी ब्याह देते हैं और वो घर पर चली जाती है तो उसकी चिंता मिट जाती है। आपके घर पर भी बैठी है पुत्री तो भी उसकी वो चिंता नहीं होती जो पहले थी। फर्क क्या पड़ा, आप भी वही हैं, कन्या भी वही है, अब ये फर्क पड़ा कि अब हमारी नहीं है। जहां हमारी नहीं है ऐसा भाव हुआ कि चिंता मिटी। ऐसे संपूर्ण चीजों के रहते हुए अगर मेरी नहीं है इस बात को मान लें तो उनकी चिंता मिट जाए। ये तो अनुभव की बात है, इस ऐसी कोई नई नहीं है, कोई सीखनी पड़े, सीधी बात है। और नहीं थी और नहीं रहेगी, और बीच में है मेरी ऐसा माना, उसको मेरी नहीं है ये मान लें, काम कर दें, सेवा कर दें। कोई घर पर आ जाए तो मेहमान की सेवा कर दें, वो तो हमारा काम है, आदर करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये तो काम है हमारा, परंतु उसको मेरा मानना तो काम नहीं है। ऐसे संसार की वस्तु जितनी है शरीर सहित, तो उसमें मैं और मेरा है ये नहीं है, क्यों पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में भी नहीं है। आधा बनते थी नास्ती वर्तमानी भी तत्व था, ऐसे शास्त्र की उक्ति है कि आधा बनते थे नास्ती, जो आदि में और अंत में नहीं होती है वो बीच में भी नहीं होती है। जैसे स्वप्न पहले नहीं है और जग जाने के बाद नहीं है, तो स्वप्न के समय दिखता है पर नहीं है, दर्पण में जैसे मुख नहीं है, पीछे नहीं है, पहले नहीं था, बीच में सामने आकर देखता है दिखता है, तो दिखने पर भी नहीं है, क्योंकि उस दर्पण में किसी से पूछ लोगे हमारा मुख दिखता है क्या उसमें, तो उसमें नहीं है। हम देखते हैं सामने तो दिखने लग जाता है, और जब हम हट जाते हैं तो उसमें नहीं दिखता। तो पहले उसमें नहीं था, पीछे उसमें नहीं रहता, हम देखते हैं उस समय भी उसमें है क्या मुख, दिखता है। ऐसी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे मेरी दिखती है, जो शरीर है वो मैं दिखता है, तो ये दिखता है पहले नहीं था, पीछे नहीं था, तो बीच में भी नहीं है, तो दिखता क्यों है, दिखता है अपने देखते हैं स्वास्थ्य, और दिखता है दूसरों की सेवा करने के लिए, वस्तुओं को अपनी मानने के लिए अपनी नहीं दिखती है, इन वस्तुओं के द्वारा सेवा करने का तुम्हारे को अधिकार दिया गया है, इसके द्वारा तुम सेवा करो, इस बार ये तुम्हारी दिखती है, सेवा करने का अधिकार मिला है, इस बार दिखती है। अरे शरीर में दिखता है इस शरीर का उपयोग करो दूसरों की सेवा के लिए, भगवान के लिए, संसार के लिए, सबके लिए उपयोग में लाओ। इस वास्ते मैं और मेरा दिखता है, मैं और मेरा मानने के लिए नहीं दिखता है, तो सेवा के लिए ही है। तो सेवा करने के लिए मैं मेरा है, ये पकड़ने के लिए मैं मेरा नहीं है। तो मैं मेरा पकड़ लिया तो सेवा भूल गए। अब दूसरे की चीज कोई काम आ जाए, दूसरा ले लेगा, अच्छी बात है, हमारी चीज खर्च न हो जाए, और दूसरा कोई काम कर ले तो अच्छी बात है, मैं तो आराम से रहूं, मैं कष्ट न उठाऊ, मेरे कष्ट न हो, मानो शरीर को परिश्रम, मेरा परिश्रम मान, मेरे को परिश्रम न हो, दूसरा कोई कर दे परिश्रम, काम भी दूसरा ही कर दे और खर्चा भी दूसरा ही कर दे, तो ये क्या हुआ, मैं और मेरा मान करके पकड़ लिया। और जिसके लिए मिला वो तो भूल गए, और अपना रहेगा नहीं, था नहीं, उसको मेरा मान लिया, बहुत बड़ी गलती होगी। इस वास्ते मैं मेरा केवल सेवा करने के लिए अपने को मिला है, तो उनको मैं और मेरा मान करके पकड़ लेना है, ये गलती है। सत्संग के द्वारा क्या होता है, गलती का ज्ञान होता है। जैसे भक्ति करने से वस्तुएं दिखने लगती है, इसलिए सत्संग से वास्तविकता दिखने लगती है, वास्तविकता दिखने लगती है, उसी तरह से काम में लाए उसको तो बस निहाल हो जाए। जब ये पता लग गया कि मैं और मेरा ये केवल अपना माना हुआ है और मिला है केवल सेवा करने के लिए, तो सेवा करने में इनको लगा देना अच्छी तरह से, आराम लेने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं, मेरा मांगने के लिए नहीं, अभिमान करने के लिए नहीं। मेरा मांगने से तो अभिमान आता है, संसार में धन बहुत पड़ा हुआ है, उस धन को लेकर कोई कहता है मैं धनवान हूं, उसका अभिमान नहीं आता। ऐसे विद्या बहुत सी है हमें नहीं आती, उस विद्या को लेकर मैं विद्वान हूं ऐसा नहीं मानते, मैंने पढ़ लिया इस बार से उस विद्या का अभिमान था कि मैं विद्वान हूं, तो तेने पढ़ लिया ये भूल जाएगा, लकवा मार जाए तो भूल जाए, मर जाए तो भूल जाए, तो ये भी मेरी नहीं रहेगी। तो पढ़ाई की है, ये विद्या है, इसका उपयोग करना है। अपने पास कोई विद्या ही है, गुण है, योग्यता है, पद है, अधिकार जो मिला है, कहीं कोई अफसर बन गया, कहीं कोई मिनिस्टर बन गया, तो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो मिनिस्टर बना है केवल सेवा के लिए, अब उसको मानता है सुख भोग के लिए, आराम के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए, तो वो तो रहेगा नहीं, दुख होगा फिर और अन्याय कर बैठेगा, पद को अपना ही मान कर अन्याय करता है आदमी। ये तो भाई सेवा के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए मिला ही नहीं है। पशु बुद्धि निमाम से ही भागवत में आया है कि जो शरीर में मैं हूं ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में निमाम से ही इस पशु बुद्धि का त्याग कर रहे, तो मैं दिखता है ना, दिखता है सेवा करने के लिए है, अपना तो है ही नहीं, ये मैं और मेरा नहीं है, एक भगवान का है अथवा संसार का है अथवा प्रकृति का है। भगवान का है मान लो भक्ति हो जाएगी, संसार को मान लो योग हो जाएगा कर्मयोग, और प्रकृति मात्र का मान लो ज्ञान योग हो जाएगा। तो इसके साथ जो संबंध मैंने मान लिया है मैं मेरे के साथ, ये है संयोग, और इससे वियोग कर लेना उसका नाम है दुख संयोग, वियोगम योग संगीतम, योग हो गया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये योग हो गया, से मैं अलग हूं। तो दुख का संयोग ये है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। तो ये मैं और मेरा केवल सेवा के लिए है, तो कर्म योग क्या हुआ, कर्म मात्र दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, कोई कर्म नहीं, ना स्थूल शरीर का कर्म है अपने लिए, ना सूक्ष्म शरीर का कर्म अपने लिए, ना कारण शरीर का कर्म अपने लिए, स्थूल शरीर का पदार्थों का अपने लिए उपयोग नहीं करना है, दूसरों के हित के लिए उपयोग करना है, ये कर्मयोग हो गया। सूक्ष्म शरीर का जो चिंतन करना है, विचार करना है, बुद्धि के द्वारा समझना है, ये किस अर्थ है? दूसरों की सेवा के लिए विचार करेंगे, समझेंगे दूसरों की सेवा कैसे बने, सब गोष्ठ कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, क्या क्या योग्यता मेरे में है, जिस योग्यता से मैं दूसरों का उपकार कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। और उपकार करने का भाव भी ऐसा नहीं मैं उपकार करता हूँ, नहीं नहीं ईमानदारी आ जाए अपने में कि उनकी वस्तु उनको दे दें। उपकार का अर्थ है ईमानदारी, बेईमानी न हो, अपना मानना हो जाएगा बेईमानी, तो बेईमानी से बचो, बेईमानी बंधन है। जहां बेईमानी सर्वथा मिटी के मुक्ति, ये हमारा है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, ये मैं और मेरा नहीं है, बेईमानी मिट गई। तो निर्ममो निरहंकार से शांति मिटी जाती थी, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि बेईमानी मिट गई। बेईमानी से अशांति होती है, दुख जो होता है कभी भी हृदय में हलचल हो तो आदमी को सोचना चाहिए कि कहां बेईमानी की मैंने गलती कहां की, ये अशांति कैसे हो गई, कोई ना कोई गलती की है तो वही है, तो गलती कहां है इसको सोचो, और जहां मिले उसको निकाल दो, निकालो तो अशांति मिल जाएगी। नीता साहब कह रही है निर्ममो निरहंकार से शांति मत गल सकती, भक्ति भी निर्ममो निरहंकार संदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संग योगी यथात्मा धृष्य मैयर कित मनोबुद्धि, मन है मेरा हुआ, बुद्धि अहम हुई, मैयर कित मनोबुद्धि भगवान ने अर्पण कर दिया। यो मत भक्त समय प्रिय, मैं मेरा नहीं है भक्त हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, कितनी सीधी सरल बात। और वस्तु पड़ी रहे वहीं, शरीर भी रहे और वस्तुएं भी रहे, परंतु शरीर मेरे लिए मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, वस्तुएं मेरी नहीं मेरे लिए नहीं है, इतना ही तो मानना है, बड़ी सीधी बात है, बहुत सुगमता से एकदम मुक्ति सीधी बात, बंदे का काम ही नहीं, कहीं होता नहीं ये बात नहीं है, आपको ये होता नहीं है ऐसी बात नहीं है, आप करते नहीं है, करना चाहते हैं हम फिर भी होता नहीं, कि करना चाहते हैं केवल सुन करके, परंतु हृदय से ये बात है कि ये कैसे काम में आवे, किस रीति में करूंगा, आ जाएगा हम लगन हो जाएगा, आ जाएगा इसको काम में लाना है, भाई मुक्ति करना है अपने, तो बंदर में तो वही फलसना है, ऐसी भी सारी बात कितनी सरल बात है। तो ये जो सत्ता है मानी हुई इसकी, मैं और मेरी मानी हुई सत्ता, ये सत्ता नाशवान है। नायम भूतवा भवितावान भूय, जो भगवान ने कहा अयम जो स्वयं है वो भूतवा भूय भविता ना, ये शरीर और संसार ये भूतवा भूय भविता है, मन पैदा होने के बाद मैं और मेरा है और इसके नाश में मैं और मेरा नहीं है। तो भूतवा भूय भविता न, जो स्वयं हुआ आपकी सत्ता है स्वयं की, अपना होनापन ये तो भाई हरिण जगह था, किसी लोक में थे तो वहां भी अपनापन होनापन था, और किसी लोक में अगर ही रहेंगे तो होनापन रहेगा, वो जो होनापन मात्र है उसको अपने पकड़ना है, उस शरीर को और उस सामग्री को पकड़ना नहीं है। निर्धन हो जाता है धनी होकर के तो उस धनीपन को याद रखता है, पद को पा करके और मिट जाता है तो उस पद को याद रखता है कि मैं ऐसा था, इतना धन था मेरे पास में, अब मैं क्या करूं, दुख पाता रोता, तो वो नहीं रहा तो अब है वो कौन सा रहेगा भाई, रहने की रीति है नहीं, ये मैं और मैं मिटने वाला है, ये पैदा होकर होने वाला है, ये तो रहने वाला नहीं, रहने वाला तो वही है जो स्वतः पहले था और पीछे रहेगा, वो क्या है, होनापन अपना, वो होनापन शुद्ध अपना स्वरूप है, वो होनापन किसका है, परमात्मा का है, उसी को कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अपनी जो सत्ता है होनापन मैं हूं, केवल होनापन मात्र ये परमात्मा का अंश है। मनुष्य स्थान इंद्रियाने प्रकृति स्थान कर सकती क्या, मैं और मेरा मन ये कर सकती, ये भूख है मैं मेरा मन दिया, मैं मेरा मन गया, नाराज हो गया, क्या तेरे पास आ गया, क्या तेरे पास चला गया, बता नहीं, तेरी सत्ता है सत्ता सिद्ध, इन वस्तुओं का अधीन है क्या सत्ता? जिन अधीन मान लेता धन चला गया तो मैं तो मर गया, कुटुंब चला गया मैं तो मर गया, तो कुछ मर गया तो पहले भाई पहले तू तो है धन तो पीछे आया पीछे चला गया, तू कैसे मर गया? बड़ी आश्चर्य की बात है, बैठी चीज को अपने मान ली, अब हमारी हार हो गई साहब, पहले क्षण में हम हार गए मर गए हम, पर तू कैसे मर गया? पहले अंदर खड़ा ही नहीं हुआ, अब तेरे जीत नहीं होनी, पहले खावे से जाएगा, तू मर कैसे गया? अभी जो मुफ्त में ही बैठे बैठे मौत ले ली, मैंने मर गया, कितनी आश्चर्य की बात, व्यापार किया धन मिल गया राजी हो गया, और व्यापार किया धन चला गया, ओ मैं तो मर गया, आश्चर्य की बात है, तू कैसे मर गया? धन आया धन चला गया, तू तो है जैसे कहते रह गया, मर कैसे गया? ऐसे शरीर और संसार कुटुंब ये आया हुआ है और चला जाएगा, ये सीधी बात है, किसी के पास नहीं रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा ये उनके पास भी नहीं रहा तो अपने पास कैसे रहेगा? अपने पास में वो भी चला गया, बाल्यावस्था चली गई, तू कैसे मर गया? इस वास्ते ये जितना मैं मेरा मानते हैं, ये भाई अपना पहले था नहीं, अपना पीछे रहेगा नहीं, ये मानी हुई सत्ता है इनकी, इनमें मैं पर माना हुआ है, इनमें मेरा पर माना हुआ है, और माने हुए की बात है ना, वो न मानने से मिट जाती है, ये बात एकदम पक्की है, इसमें उद्योग नहीं है, नहीं माना मिटी, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, और यह मैं कैसे हो सकता हूँ बताओ? यह तो देखने में होता है, मैं जानने वाला होता हूँ तो यह मैं कैसे हो सकता हूँ? अब ये दीवार मैं हूँ, जिसको यह कहते हैं उसको मैं कैसे कह सकते हैं? इसी बात को बताया कि इधर भी सही रंग कौन थे, क्षेत्र में तीव्र ही थे, ये तो क्षेत्र है, इधर भी वो व्यक्ति जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है मेरे मत में ज्ञान, ये मैं मेरा और अपना जो सत्ता अलग है ये ज्ञान है भगवान के मत में, और वो जो सत्ता है वो परमात्मा के साथ एक हो गई, वो एक हो गया और ये क्षेत्र एक हो गया, अगर क्षेत्रज्ञ चाहिए मानती थी सर्व क्षेत्र, इस बात सर्व क्षेत्रों में मेरा स्वरूप है, और क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान हो ये ज्ञान हो मत मामा, इन दोनों का असली तरह ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान, बोले इस ज्ञान में क्या बाधा लगी? ये मैं और मेरा नहीं, ये है जनता से कहलाने वाले मैं और मेरा नहीं और स्वरूप, सीधी बात बहुत सरल बात, कठिनता हो तो कोई बोलोगे कठिनता है इसमें, क्या कठिनता है? अब आपके तो होता नहीं, ये बिल्कुल गलती है, आप करते नहीं, आपके लगन नहीं है, ये लगन हो जाए तो हो जाएगा, अरे सेवा के लिए मान तो हो जाएगा, और मैं को बदलो तो बदल सकते हो, कभी मैं संसार का हूं नहीं, मैं तो संसार नहीं भगवान का हूं, ये बदलना बिल्कुल आता ही है, गृहस्थता है मैं बता दूंगा, होता है कि नहीं बदल जाता बदल जाता है, तो बदल दो चाहे मिटा दो, नहीं तो शुद्ध कर लो, तीनों बातें हैं, ये मैं अपने को मिटा दो चाहे बदल दो चाहे शुद्ध कर लो, मिटा देना ज्ञान मार्ग से, बदल देना भक्ति मार्ग से, अस्वाभिमान चाहे नहीं बोरे मैं सेवक रहूं पति पति मोर बदल दिया, अब शुद्ध क्या कर दिया कि माँ के सामने जाओ तो माँ के प्रति जैसा सपूत से सपूत काम करे वैसा काम करो, पिताजी के सामने जाओ तो सुपुत्र से सुपुत्र काम करे वैसा काम करो, पत्नी के साथ जाओ तो वहां भी ऐसा करो जो अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ से पति का कर्तव्य वो करो, पुत्र के प्रति जाओ तो वो अच्छे से अच्छे पिता काम करे वो करो, जिसके साथ आपका संबंध है उसको अपना स्वार्थ अभिमान कुछ न रख करके उसके साथ संबंध जैसा करना चाहिए वैसा ही करो, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए बदल दो साहब मता मुझे इस बात से निर्मूल अहंकार शांति मरी है, नारायण 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 राम 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 राम।
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 8 फरवरी 1981 को गोविंद भवन कलकत्ता में प्रातः 5 नित्य स्तुति के बाद हुआ।
ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परिचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो नभिधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उनकी परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। ये निश्चय करते हैं थोड़े समय में, सत्संग सुनते समय, तो उन्हें से ठहरता नहीं, टिकता नहीं। कारण क्या है कि भीतर रुपये पैसे पदार्थ संग्रह करने की इच्छा और उनके द्वारा सुख भोग की इच्छा, ये दो तरह की इच्छा रहने के कारण वो निर्णय टिकता नहीं कि एक परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है, ये ठहरती नहीं बात। जैसे संतों ने कहा कि कर्म जिन्हों का चीखना बेतर शब्द उछांट, जन हरिया लागे नहीं घरे सो पड़े छांट। तेल का क्या हो, उसको वर्षा में रख दो तो बूंदें पड़ेंगी जरूर ऊपर पर तो ठहरेगी नहीं। चिकनास इतना बैठा हुआ है कि वो फेंक देगा पानी। ऐसे धन का और भोगों का अधिक चिकनास जिनके भीतर बैठा है वो तो सुनते ही नहीं, स्पर्श करते ही नहीं। थोड़ी बहुत इसी बात की कमी है तो वे अलबत्ता इस तरह रुचि रखते हैं और विचार भी करते हैं परंतु फिर भी वो बात ठहरती नहीं। पीछे वही बात हो जाती है, धन का संग्रह करो, सुख भोगों का संग्रह करो, इसके बिना काम कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता इसके बिना। दृढ़ता से जती हुई है, ये पता नहीं कि चलेगी कब तक चलाओगे, इस तरह वृत्ति जाती नहीं, सोच नहीं सकते, वो आसक्ति के कारण। अब ये विचारना है कि बात क्या है वास्तव में, तो सज्जनों सबके अनुभव की बात है। विषयों का कितना ही सेवन कर लिया और रुपये कितने ही संग्रह कर लिए तो क्या भीतर की इच्छा पूरी हो गई, नहीं होती। नमूना देख लो, आप ज्यादा संग्रह नहीं है, ज्यादा भोग नहीं है, तो नमूना तो देखा हुआ है ही। ये तो ये धारणा है कि एक संग्रह का सुख और एक भोग का सुख, इन दोनों से रहित तो कोई आदमी नहीं है। देखा तो है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, भोगा तो है। तो उसे तृप्ति नहीं हुई तो इसी धातु की चीज बहुत मिल जाती है, तृप्ति कैसे हो जाएगी। तृप्ति नहीं होती तो कुछ तो होती, और शास्त्र तो कहता है कि बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कारण क्या है कि स्वयं तो है सत और ये पदार्थ और भोग है असत। अब सत की भूख असत के संग्रह से भोग से मिटेगी कैसे, तो ये भोगेच्छा संग्रह इच्छा जागी कहां से, जहां से संग्रह किया सुख भोगा वहां से पैदा हुई है। अब इनको जो बढ़ाते जाओ जो ये बढ़ती चली जाएगी, आग बहुत जोर से बढ़ जाएगी। लाखों करोड़ों रुपये जिनके पास में है उनके तो करोड़ों की ही इच्छा है, और थोड़े हैं तो उनकी थोड़ी इच्छा है, ज्यादा तो ज्यादा इच्छा है। ऐसे ही भोग भोगते भोगी तो उनकी भोग की इच्छा बढ़ती रहती है। हमेशा कृष्ण भक्त में वह भूये भावी बढ़ते, शास्त्र में लिखा है कि जैसे अग्नि में सहती सहती आहुति देते जाओ घी की, क्या अग्नि शांत हो जाएगी, शांत नहीं होगी और बढ़ेगी। इसी तरह से मन स्वभाव का धन संग्रह करते जाओ करते जाओ तो वो आग की तरह लालसा बढ़ती चली जाएगी, समाप्त नहीं होगी। तो ये दोनों इच्छाएं पूरी होती नहीं है, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई और कभी होगी नहीं, होना कभी संभव ही नहीं है। बात ये सच्ची है, अगर इसको पक्की मान ले तो बड़ा लाभ हो जाए, इसको रास्ता मिल जाए, शांति का पूर्ति का रास्ता मिल जाए। परंतु ये इधर इधर दौड़ता है तब तो रास्ता मिलता नहीं। कोई बताता बताता है तो थोड़ी ठीक लगती है परंतु टिक नहीं सकते, वहां पुस्तकों में पढ़ करके भी इस पर कायम नहीं रह सकते। सुख भीतर वो बैठी हुई है कि संग्रह से और सुख से काम चलेगा, बिना संग्रह बिना बिना सुख बिना बिना काम कैसे चलेगा। क्यों नहीं सोचते हैं कि चलाओगे कब तक, प्राण है तब तक, फिर बाद में कैसे चलेगा भाई, ये साथ में चलेंगे क्या, ये सोच सकते नहीं, ताकत नहीं सोचने। ये बड़ा भाई एक उलझन है, बड़ा भाई दुख है। थोड़ी सी कृपा करो आप इनको समझो। जैसे नींद में सोए हुए को कभी प्यास लग जाती है तो वो पानी पीता है, स्वप्न में पानी पीता पीता जाता है, तृष्णा शांत होती ही नहीं, तृष्णा वो शांत कैसे, वो पीने वाला शरीर और उसमें पिया जाए वो पानी, ये दोनों ही केवल दिखते हैं, है नहीं, इस वाली तृप्ति कैसे हो। इस तरह से ये संसार के पदार्थ और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अंतःकरण ये सबके सभी एक जाति गए हैं, अब इनसे वो तृप्ति होगी कैसे, कभी नहीं होगी। और जग जाए तो फिर ठीक, अपने शरीर में हजार अच्छा जड़ है सत्यार सत्या सही उन्हें पसंद हो जाएगी। ऐसे ही इन पदार्थों से जग जाए उठ जाए ऊंचा परमात्म तत्व की तरफ चला जाए तो वहां सच्चा स्वरूप स्वयं है, सत्य परमात्मा है, उसके मिलने से ये दोनों इच्छाएं मिल जाती, न संग्रह की इच्छा रहती न भोगों की इच्छा रहती, क्योंकि इच्छा तो कमी में होती है ना, कमी रहती ही नहीं, वो पूर्ण है। तो पूर्णता की प्राप्ति होने पर अपूर्णता रहती ही नहीं, किंचित मात्र नहीं रहती, पूर्ण हो जाता। अब अपूर्ण को लेकर वैसे ही शरीर धारण कर उसी पदार्थों को लेकर अपूर्ण को अपूर्ण के द्वारा ही पूर्णता करना चाहता है तो अपूर्णता ही बढ़ती रहती है। कहते थोड़ा सुख तो होता है भाई, भोग भोगने से रुपया मिलने से सुख होता है ना, ये तो अनुभव में आती है बात। इसमें एक ध्यान देकर आप लोग सुने कि जो पूर्ति दिखती है ये पूर्ति नहीं दिखती, पूर्ति नहीं होती है। जैसे भूख लगी भोजन करने से तृप्ति हो गई, वो भोजन से तृप्ति नहीं हुई है किंतु खाने की शक्ति समाप्त हो गई, अब तृप्ति हो जाए तो फिर भूख लगनी नहीं चाहिए, फिर खाने की शक्ति हो जाती भूख बैठी बैठी। प्यास लगी जल पिया शांत हुई फिर कैसी वैसी प्यास लग जाती है, तो प्यास शांत नहीं हुई है किंतु पीने की ताकत समाप्त हो गई, वो थकावट हो गई, उसमें असामर्थ्य आया, उस असामर्थ्य को तृप्ति मान लेते हैं। संसार के किसी भोग को आप भोगो, जो सुख मिलता है वो सुख क्या मिलता है, उस भोग भोगने की शक्ति जब समाप्त हो जाती है, शक्ति नहीं रहती, तो कहते हैं सुख मिल गया, मिल क्या गया, फिर वैसे ही वही कृष्णा, सिवाय थकावट की और कुछ मिलता नहीं है, उस थकावट को तृप्ति मान लेते हैं। क्यों मान लें, राग है ना पदार्थों का, राग वो राग तंग करता है, अभाव है नहीं, अब वो थकावट हो गई तो राग उस समय में तंग नहीं करता, इस वास्ते देखते हैं कि तृप्ति हो गई, तो तृप्ति होती नहीं। ऐसी दिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी आग बढ़ेगी है, ये शांत नहीं होगी। जब कभी भी शांति मिलेगी तो इससे उल्ट करके जो सत्य तत्व है उस पर चलो, क्योंकि आपका स्वरूप सत्य है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ चले बिना इसको शांति मिल नहीं सकती कभी। अनादि काल से चला आ रहा है संसार, हजारों लाखों वर्षों का इतिहास हमारे को सुनने को मिलता है, उसमें किसी एक की भी तृप्ति नहीं हुई तो अब अपनी कैसे हो जाएगी। कहीं तृप्ति होने की रीति होती तो किसी की तो तृप्ति होती अभी तक, किसी जीव की तृप्ति नहीं हुई तो नई रीत कैसे हो जाएगी, अब तृप्ति कैसे हो जाएगी। तो जाने दो उनको, अपनी उम्र में देख लो, बचपन से लेकर आज दिन तक जब तक स्मृति है तब तक की अवस्था को लेकर देखो, क्या कभी तृप्ति हुई है, क्या सदा के लिए कि बस धन से भोगों से बस हो गई, हम तो पीछे भूख लगेगी नहीं ये कभी, ना धन की ना भोगों की। तो उम्र भर में अभी तो तृप्ति नहीं हुई, फिर भी उसी के पीछे पड़े है, ये तो अपने अनुभव का महान निरादर है। शास्त्रों की संतों की बातें मत सुनो, संप्रदायों की बातें मत सुनो, कम से कम अपनी बात तो सुनो, अपनी बात की तरफ तो लक्ष्य करना चाहिए ना। तो इसे तृप्ति नहीं होती है, हुए कैसे, स्वयं है सत और शरीर इंद्रिया पदार्थ ये सब है असत। अब असत के संग से ही भूख है इसकी, असत का संग न करे पूर्णता की, इसकी स्वतः पूर्ण है ये, ना अभाव भी देते सत, असत का अभाव होता ही नहीं, सत स्वरूप है। अब असत का संग करके और असत के द्वारा ही तृप्ति करना चाहता है, और भूख लगी असत के संग से, जितने अंश में असत का संग किया है उतने अंश में सत को भूख लगी है। और जो सत्य तत्व परमात्मा उनसे विमुख हुआ है उसे भूख लगी है, उसे विमुख हो गया और असत को पकड़ा, ये है भूख खास। वह असत का त्याग करके सत को पकड़ ले तो अतृप्त हो जाए, बिल्कुल कौड़ी के पास मत हो रही, भूख रहती नहीं, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, करके कोई देख ले। और जब तक असत की तरफ जाते हैं, असत के द्वारा तृप्ति करना चाहते हैं, तब तक भैया शांति मिलने की है नहीं। ये पक्की निश्चय हो जानी चाहिए बात कि भाई करके देख लिया हमने, शास्त्रों से सुन लिया, संत महात्माओं से सुन लिया, हमने भी करके देख लिया, इसे कैसे तृप्ति हो जाएगी, असंभव बात है। स्वयं सत है, वो असत का संग करके सुख चाहता है, सुख भोगता है कि तृप्ति हो जाए, कैसे हो जाएगी। जिसको भोगता है संग्रह करता है वो भी रहने वाला नहीं, ऐसा बहता है चला जा रहा है, ना आप रहता है, केवल थकावट को तृप्ति मान ले और सामर्थ्य को ही तृप्ति मान ले, उसको पूर्ति मान ले, ये पूरी होती नहीं, क्योंकि तत्व से अपूर्ण चीज है, अपूर्ण से पूर्णता कैसे होगी, पूर्णता तो पूर्ण तत्व से होगी, उस पूर्ण तत्व से प्राप्ति होगी तो उसको चाहे ज्ञान मार्ग में समझो तो पूर्ण का प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा को इससे समझो तो परमात्मा की तरफ चलो तो वो पूर्ण है, उसी पूर्णता हो जाएगी, स्वरूप पूर्ण में चलो तो ज्ञान मार्ग है, भगवान को पूर्ण समझो तो परमात्मा है वो पूर्ण है, और योग मार्ग में चलो तो अपूर्णता का त्याग ही त्याग करना है, अपूर्णता का कर्म कर्म योग है, वो कर्म अपने लिए कभी नहीं होता, अगर अपने लिए कर्म होता है उसे तृप्ति कभी नहीं होती, होगी ही नहीं, कर्मों से कल्याण हो जाए असंभव बात, पदार्थ और क्रिया से जीव की तृप्ति नहीं होती। तो ये केवल दूसरों के लिए ही करना, अपने लिए करना ही नहीं है, और के लिए करते करते क्रिया कर पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, पूर्णता की स्थिति हो जाएगी स्वतः। ये सांख ही प्राप्त स्थानम तभी हो गई गंभीर। तो संसार में तो केवल सेवा करने के लिए ही आए हैं, पदार्थों के द्वारा भी सेवा करो, और भोग है वो भोगने में जो सुख होता है अच्छा मालूम देता है, इसका कारण क्या है, इसमें मूल में चीज है, जिन पदार्थों से हमें सुख मिलता है, जो हमें ज्ञान हुआ कि इनसे सुख मिलता है, तो इन पदार्थों के द्वारा भी उनकी सेवा करो, भोग भोगने के लिए यही तनु कर फल विषय ने भाई भोगना इसका काम है ही नहीं, परीक्षा हो गई, इस वास्ते इन चीजों से दूसरों की सेवा करो, केवल औरों के लिए ही है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर सब दूसरों के लिए ही, हमारे लिए है ही नहीं, ये पदार्थ और भोग हमारे लिए है ही नहीं, पक्की बात है, ये त्याग के लिए ही है, औरों के लिए है। तो सांख्य योग में त्याग करने में जहां कठिनता पड़ती है, वैराग्य तेज का चाहिए तब त्याग होता है, और कर्मयोग में थोड़ा भी वैराग्य और दूसरों के हित की भावना हो जाती है तो दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग शुभ हो जाता है। इस वास्ते औरों को सुख पहुंचाना है, ये वृत्ति हो जाए भीतर में, बिल्कुल सिद्धांत बैठ जाए, तो सब जितना जो नाशवान पदार्थ है उनका प्रवाह औरों की तरफ हो जाएगा, तो हमारे से वो विमुख, उससे हम विमुख हो जाएंगे तो परमात्मा के सम्मुख, परमात्मा हमारे सम्मुख तृप्ति हो जाएगी। कर्मयोग में कर्मों की ताकत नहीं है, पदार्थों की ताकत नहीं है, तो त्याग की ताकत है। इस बार कर्मयोग को त्याग का आवेदन है, समुद्र विच्छेद करना है, और समुद्र विच्छेद क्रिया से करना कर्मयोग हो गया, ज्ञान से करना ज्ञान योग हो गया, और श्रद्धा भक्ति से करना भक्ति योग हो गया। वास्तव में जड़ता का त्याग करना है, जिसके जो सुख मारो उसी तरह से करो, कोई आग्रह नहीं कर्मयोग करे ज्ञान योग करे भक्ति योग करे। जड़ता से संबंध विच्छेद करके चिन्मयता में जाना है कि जिससे तृप्ति हो जाए, अतृप्ति होना है ही नहीं, अतृप्ति का कोई अंश ही नहीं है, हमारा कमी कभी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। तिन संग्रह से और भोगों से शांति हो जाएगी, बात है नहीं बिल्कुल, चाहे आज माने और चाहे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद माने, और कुछ जन्मों के बाद माने, सैकड़ों हजारों जन्मों के बाद मानो, अंत में ये मानना पड़ेगा तो फिर देरी क्यों करें, इसमें आने पर भी शांति होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। अब देरी करो आदमी मर्जी है, जब कभी करो वो इसी बंद हो गया नहीं तो फिर देरी क्यों करनी चाहिए। आज इसमें के ऊपर खूब मन लगाकर करो, यार वो भी कितनी बात है, आपको त्याग की बात नहीं कहते हैं, स्वरूप से छोड़ दो, गृह छोड़ दो, धन छोड़ दो, चीजें छोड़ दो, इनके द्वारा जो तृप्ति की इच्छा है इसको छोड़ दो, धन भी कमाओ, प्रबंध करो, सबका पालन पोषण करो, करने के लिए तो युद्ध की भी भगवान ने मनाई नहीं की, तो गृह का काम करने के लिए मनाई कैसे की जाए, जिस युद्ध में गला काटना पड़ता है दिन भर, ऐसे क्रिया की भी भगवान ने सिद्धि नहीं की भी इसका मत करो, व्रत नहीं किया, तो संसार काम करने की थोड़ी भीतर से इच्छा है, अपने तरफ जो जड़ता को खेचना है, ये ही वास्तव में अनर्थ की हेतु है। विनाशी पदार्थों को अपनी तरफ खींचने की इच्छा है मन में कि संग्रह कर लें, सुख भोग लें, बस यही अनर्थ की हेतु वास्तव। अब उस प्रवाह का चाहे विवेक के द्वारा त्याग कर दें, चाहे कर्मयोग के द्वारा त्याग कर दें, चाहे भक्ति के द्वारा त्याग कर दें, चाहे इनके सिवाय और किसी उपाय से भी जड़ता से विमुख हो जाए, चिन्मय का सन्मुख हो जाए, किसी उपाय से ही, कोई आग्रह नहीं, आपका नया आविष्कार रोग से हो जाओ उससे हो जाओ, अब यही ज्ञान करता है, यही कल्याण करता है, ये ठीक है, जिन आचार्यों ने जिसके द्वारा कल्याण किया उसी का उन्होंने विवेचन किया, वर्णन किया, ठीक बात है, सब सत्य है, पर नाशवान से अविनाशी की भूख कैसे मिटेगी, अविनाशी का संग, अविनाशी ने विनाशी का संग किया तब से भूख लगी, और फिर विनाशी के संग से भूख मिटाना चाहते हैं, संभव नहीं, असंभव है। मेरी प्रार्थना है कम से कम, कम से कम, कम से कम इस विषय को विचार तो करो, सोचो इस विषय को गहरा विचार करो, सोचो, प्रश्न करो, इसको ठीक तरह से समझो, इतना काम तो करो, कहने मात्र से मानने कोई जरूरत नहीं, विचार ठीक समझ में आ जाएगी, बात सही बात है। इस बात से भोगी सूर्य प्रसिद्धता नाम इनमें आसक्त है, उनकी परमात्म तत्व को प्राप्त करना ये निश्चय ही नहीं हो सकता, सिद्धि कैसे होगी, हो गई सूर्य प्रसन्नता ना और तयापरितीर्थता, फिर पुष्पित वाणी है उसे ऐसा भोग मिलेगा, धन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसी बातें सुनते हो फिर मुझे आकृत हो जाते हो, ये सत्संग मुझे सौ जरूर भाग जाते हो, तो परमात्म प्राप्ति का निश्चय ही नहीं हो सकता, प्राप्ति कैसे होगी, तो इस बात को समझो। नारायण नारायण नारायण, तो उसको भी साधु ने वैसा मंत्र दिया, उसको साधु मान लेना चाहिए। ये क्या हुआ, जैसे सूर्य के सामने कोई चीज आती है दर्पण, चाहे काठ का टुकड़ा दे दो, पत्थर का टुकड़ा दे दो, मिट्टी की ठीकरी दे दो, छाया हो जाती है, उसको वो आत्मशीशा नहीं बना सकता सूर्य, परंतु भगवान के तो यहाँ दुर्गुण दुराचार खूब पड़े हुए, फंसा हुआ है पापों में, वो भी भगवान के सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अघनाश ही, तभी सब पापों का नाश भगवान कर देंगे, न उद्धार कर ले इतनी बात नहीं है, दुनिया के उद्धार करने की सामर्थ्य आ जाती है, तरण तारण नरते हुए वे तरण तारण हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान के शरण होने से उनमें विलक्षणता आ जाती है। वो विलक्षणता उनकी नहीं होती है, वो भगवान की हुई होती है। जितने जितने भगवान के सन्मुख होते हैं इतना इतना ही भगवान का प्रभाव उसको शुद्ध कर देता है, और जितना वो भगवान के सन्मुख न होकर संसार के सन्मुख रहता है इतनी इतनी अशुद्धि अपवित्रता मलिनता उसमें रहती है। सर्वथा भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं तो आपका हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा होता है। तो कमी किस बात की है, हम ही संसार के आश्रय को न छोड़कर और भगवान का आश्रय लेते हैं तो ये दुविधा में दोनों गया, माया मिली निराम। ये जो दुविधा रखे ना, भगवान का भजन भी करे, कुछ झूठ कपट भी कर ले, कुछ चालाकी जालसाजी बेईमानी भी कर ले, ठगी भी धोखेबाजी भी कर ले और भगवान का नाम ले ले, तो भगवान इतने हैं भोले नहीं है, वे भी समझते हैं, उनमें भी अकल है। आप सारा पूरा लेते ही नहीं तो पूरा सारा कैसे दे देंगे, वर्षा बरसती है अब उससे जल पड़ता है तो जल के सन्मुख होता है तो पानी भर जाता है, और नहीं तो महाराज ऊपर से बड़ा नाला गिर रहा है और घड़ा रखा जाए उल्टा उसके सामने तो क्या भर जाएगा, जल में तो कोई कमी नहीं थी और घड़ा ही ऊंधा है, क्या करे। ऐसे भगवान की कृपा तो संपूर्ण जीवों पर बरोबर बरस रही है, स्थलांतर कर दे निहाल कर दे, परंतु वे भगवान की सृष्टि में रहते हुए उल्टे ही रहते हैं। भगवान कहते हैं वैसे नहीं करते किंतु उल्टा काम करते हैं, तो भाई उनको शांति कैसे मिले। जैसे वर्षा में रहता हुआ भी पात्र खाली रह जाता है, खाली सूखा रह जाए, सूखा नीला भी नहीं होता, साफ ही ऊंचा रहता है। ऐसे भगवान की स्थिति में रहकर भगवान से वृद्ध रहता है तो भगवान की कृपा को वो प्राप्त नहीं करता, परंतु भगवान की वर्षा में कमी नहीं, वर्षा ऐसा है कि उल्टा दूर बरसे नहीं, उस वहां पर जल न बरसे ऐसी बात नहीं, वर्षा तो समान रीति से है। ऐसे भगवान की दया तो मात्र जीवों पर समान रीति से, वो जितना जितना सन्मुख होता चला जाता है उतने उतने उसमें विलक्षणता भगवान से आती जाती है, स्वाभाविक। भगवान को करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक कायदा है। तो इस वास्ते ग्रहण करने वालों की योग्यता अथवा उनकी आवश्यकता है, वो जैसा जैसा ग्रहण करते हैं वैसा वैसा भगवान के प्रभाव मिलता है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होने की आवश्यकता है, तो भगवान के सन्मुख मानो भगवान का ही भजन करना है, अब भगवान से विरुद्ध काम नहीं करना है। इनमें भी भगवान के कायदे विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लौकिक मर्यादा विरुद्ध काम नहीं करेंगे, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। समझ तो ये रख रहा है कि भजन की विशेष आवश्यकता है, और बात भी ठीक है, भजन से ही सब शुद्ध होता है, परंतु सज्जनों एक बात बतावें, इस तरफ ख्याल कम लोगों का जाता है कि जो पाप अनाचार दुराचार करते रहते हैं वे भगवत कृपा को ग्रहण नहीं करते, और पाप दुराचार अन्याय आदि नहीं करेंगे, बचते रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो विशेष लाभ होगा, थोड़ा भी भजन करेंगे तो भी अगाड़ी फंसेंगे नहीं, पाप नए नहीं होंगे, और नए नए पाप करते रहेंगे भजन भी करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी उन्नति उनकी नहीं होगी। भजन किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, परंतु वर्तमान में शांति नहीं मिलेगी। कहते इतना जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, इतने अच्छी मर्यादा में चलते हैं, परंतु शांति तो नहीं मिली। कहते तो मैंने दुर्गुण दुराचारों को त्याग नहीं किया, हृदय का भाव शुद्ध नहीं बनाया, तो हृदय में जलन तो रहेगी, क्योंकि पाप का कायदा है वो जहां उसी जलन पैदा करेगा ही। इस वास्ते भीतर से त्याग कर दे सर्वथा दुर्गुणों का, दुराचारों का, भगवान के विरुद्ध काम करने का त्याग करेंगे तो अंतकरण बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा, नहीं तो भाई साथ साथ में पाप भी बनते रहेंगे तो अपवित्रता नई नई बनती रहेगी, तो वर्तमान में विलक्षणता नहीं प्रकट होगी। इस बात